मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 23 अगस्त 2017 है और आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आज किसी विषय पर अपनी बात शुरू करूं, एक छोटी सी सूचना है। और सूचना यह है कि मेरे पास काफी ऐसे मेल आ रहे हैं जो आप सबके अपने जीवन की किसी समस्या से या सलाह से संबंधित होते हैं। इस और कुछ लोगों ने यह भी लिखा है कि मैडम प्रीति अग्रवाल का मोबाइल नंबर उनके पास नहीं है या था तो वो मिसप्लेस हो गया है, तो वह नंबर बताया जाए। दोस्तों, दो बातें हैं। पहली बात तो यह कि जो लाइफ मैनेजमेंट से संबंधित जो इश्यू होते हैं वो सच पूछिए तो ईमेल के जरिए बताना पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए जो सबसे अच्छा जो चैनल है, कह लीजिए माध्यम है, वह है बातचीत करना। क्योंकि दिमाग में कुछ प्रश्न होते हैं, उनके जब तुरंत उत्तर मिलते हैं तो उस पर सही सुझाव सलाह दी जा सकती है। इसलिए फ्रेंड्स, ईमेल की बजाय ज्यादा बेहतर है कि हम किसी से बात करें। और वह बात करने के लिए जो डॉक्टर प्रीति अग्रवाल मेरी पत्नी हैं, उन्होंने अपनी स्वीकृति दी हुई है, जिनका नंबर मैं बीच बीच में अनाउंस करता रहता हूं। और ठीक है, बीच में नए नए लिसनर भी जुड़ते हैं, श्रोता भी जुड़ते हैं, तो उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं होती है। तो दूसरी बात यह कि मैं अब आप सबको डॉक्टर प्रीति अग्रवाल का मोबाइल नंबर दे रहा हूं। आप सब में से किसी की भी जो अगर कोई ऐसी समस्या है तो वे बकायदे मोबाइल पर उनसे बात कर सकते हैं। हो सकता है कि उनकी समस्या का कोई समाधान निकल आए, ना भी निकले तो देखिए एक दृष्टि तो मिल जाती है। जब हमें कोई उपाय बताया जाता है, कोई तरीका बताया जाता है, तो हम उस पर एक्ट करना शुरू कर देते हैं, एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज तो हमें समझ में ही नहीं आता है कि अब क्या करें, लगता है जैसे कि रास्ता बंद हो गया है। और जब हम एक्शन लेते हैं तो चीजें तो बदलती ही हैं, अब कितनी बदलती हैं, अच्छी कितनी हो पाती हैं, अब एक अलग बात है, लेकिन चीजों में बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, डॉक्टर प्रीति अग्रवाल का नंबर है 9644624449। मैं रिपीट कर रहा हूं, 9644624449। मित्रों, यह उनका मोबाइल नंबर है, आप सब उनसे बातें कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए मैं अब थोड़ा सा इसी से संबंधित विषय को लेकर आज आपसे बात करने जा रहा हूं। और अगर इसे आप कोई नाम भी देना चाहें तो आप कह सकते हैं इमोशनल मैनेजमेंट। आजकल मैनेजमेंट शब्द बहुत चला हुआ है, तो उसी से जुड़ा हुआ शब्द मैंने इस्तेमाल कर लिया है, वही शब्द इस्तेमाल कर लिया है। हम सब देखिए भावनाओं से सराबोर हैं। भारतीय कुछ ज्यादा ही भावनाओं से भरे हुए होते हैं, और ये उनका जेनेटिक भी है आप कह लीजिए, या हमारे दर्शन में जो कुछ भी हमें बताया गया है वह सदियों से हमारे जीन्स में आता हमें ज्यादा इमोशनल बना देता है। हम सब थोड़े से ज्यादातर दूसरी चीजों को भी लेकर के चलते हैं जीवन में, जैसे आध्यात्म है, पारिवारिक संबंध है, वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत हमारे साथ जुड़ा हुआ है कि पूरी दुनिया ही हमारा कुनबा है। तो स्वाभाविक रूप से हम सब में जो तार्किक दृष्टि है उस तरीके से, अदरवाइज कमी नहीं है, थोड़ा सा कम होता है और हम इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं। दोस्तों, ये कोई बुराई नहीं है, ये कोई कमी नहीं है, हाँ, लेकिन मुश्किल तब होती है जब हम सिर्फ इमोशन पर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी कि पूरी तरह से अपने आप को इमोशंस को ही समर्पित कर देते हैं, और यही हमारा सबसे बड़ा संकट का कारण बन जाता है। दोस्तों, होता क्या है, देखिए हम सब, अगर हम केवल दो तत्वों की लेकर बात करें, और इस पर पहले भी हम लोगों ने थोड़ी बहुत बात की है कि दो चीजें हमारे पास हैं। हमारे पास मस्तिष्क है जिसमें तर्क उठते हैं, और दूसरा हमारे पास इमोशंस हैं जिसमें भावनाएं उठती हैं, ये हृदय है, हृदय में भावनाएं उठती हैं। अब होता यह है कि हम इन्हें कभी कभी के अक्सर यूं कह लीजिए कि एकदम अलग अलग मान लेते हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो भावनाओं को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं कि इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो कुछ भी है वो तर्क है। और ऐसे हमारी फिलॉसफी में शुरू से ये द्वंद्व चलता आया है। कहीं लोग बिल्कुल इमोशनल हैं, कहीं लोग बिल्कुल तर्क प्रधान हैं, कहीं वो तर्क और इमोशंस दोनों को मिला करके चलते हैं। तो मतलब अलग अलग तरह की विचारधाराएं, दर्शन हमारे सामने उपलब्ध हैं और हम भी अपने अंदर उन्हीं सबको लिए हुए अभी जी रहे हैं। होता क्या है फ्रेंड्स की जो बौद्धिकता होती है, जो तार्किकता होती है, वो नो डाउट कि अपने आप में बहुत प्रबल होती है। और ये जो हमारा जो जीवन है, ये जो हमारा समाज है, हमारी जो प्रकृति है, वो ज्यादातर बौद्धिकता पर ही आधारित है। आप यूं कह सकते हैं कि तर्क पर ही आधारित है, राइट? अब हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं, किसी भी तरह की समस्या हो, अब आप देखिए कि उसमें फिर से दो तरह की समस्याएं आप कह सकते हैं। मूलतः शारीरिक समस्या को मैं छोड़ रहा हूं, एक वह समस्या जिसका समाधान तर्क के जरिए किया जा सकता है, अपने को समझा बुझाकर किया जा सकता है, दूसरे जब हमारी काउंसलिंग करते हैं उससे किया जा सकता है, लेकिन वो तब होता है जब उस समस्या का सीधा सीधा समाधान तर्क शास्त्र से हो। मतलब हमें ये लग रहा है कि समझ से इसका समाधान हो सकता है, और ज्यादातर समाधान याद रखिए कि समझ से हो भी जाते हैं, और इसीलिए हम काउंसलिंग कराते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, उससे सलाह लेते हैं कि कहीं ऐसी तो नहीं कि हमारी समझ इस बारे में गलत हो और हमें कोई उसे सही कर दे तो हमारा मामला ठीक हो जाए। दूसरा जो पक्ष होता है मित्रों, वो इमोशन से जुड़ा होता है। इमोशंस के साथ दिक्कत यह होती है कि इसका जो फॉर्मेट है, इसकी जो बुनावट है, वो कह लीजिए कि लिक्विड की तरह है, पानी की तरह है। पानी की तरह कहने का मतलब है कि वो थमता नहीं है। जो तर्क शास्त्र है वो तो आप कह लीजिए कि ठोस चट्टान की तरह, पत्थर की तरह है ना। वो अगर ठहर गया तो ठहर गया और उसे हिलाना आसान नहीं होता। लेकिन जो भावनाएं हैं वो बहते हुए प्रवाह की तरह होती हैं, इसीलिए उसे कंट्रोल कर पाना, बांध के रख पाना, एक जगह सीमित कर पाना, अगर बिखर गई है तो उसे समेट पाना आसान नहीं होता है। और मुझे लगता है कि ये इमोशन मैनेजमेंट की सबसे बड़ी चुनौती होती है, सबसे बड़ी चुनौती होती है। दूसरी स्थिति क्या होती है फ्रेंड्स की, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, है ना, समझ बढ़ती जाती है। अगर हमने अपने दिमाग को खुला रखा हुआ है, ओपन माइंडेड हैं, लगातार हम समाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो अनुभव हैं उनसे हम सीखते हैं, घटनाओं से हम अपने आप को मजबूत बनाते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, तो डेफिनेटली हमारी तर्क शक्ति बढ़ती चली जाती है। और जैसे जैसे हमारी यह तर्क शक्ति बढ़ती चली जाती है, इमोशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते चले जाते हैं। इसलिए कंट्रोल होते चले जाते हैं क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे इमोशंस होते हैं जो केवल इसलिए फलते फूलते हैं या बहुत प्रबल होते चले जाते हैं क्योंकि हमें समझ का अभाव होता है, या कि यूं कह लीजिए कि उस पर तर्क का नियंत्रण कम हो जाता है। जैसे बिना लगाम के घोड़ा, अगर घोड़े को लगाम रहित कर दिया जाए तो आप देखिए कि वो तो फिर कहीं भी उठा पटक करेगा, उसकी जो भी आदत है। लेकिन अगर आप लगाम लगा दें तो घोड़े की आदत उठा पटक करना है, भागना है, लेकिन फिर भी उसे आप किसी सीमा तक कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी आदत पर भी आप नियंत्रण रख सकते हैं। तो इमोशंस के साथ ऐसा होता है कि अगर वह बहुत उठा पटक मचा रहा है और हमारे पास तर्क की प्रबल शक्ति है तो हम उसे कुछ सीमा तक नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक जो दूसरी स्थिति है, जो बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है, या यूं कह लीजिए कि जो समझाने बुझाने पर भी शायद उतनी समझ में नहीं आती, वो होती है फ्रेंड्स हार्मोन से रिलेटेड, हार्मोनल प्रॉब्लम। यानी कि देखिए, हमारा शरीर लगातार एक जैसा नहीं होता है, रहता है, इसमें भौतिक परिवर्तन होते रहते हैं, भले हमें वह सीधे सीधे दिखाई न दे, हमारे सेल्स बदलते रहते हैं, ब्लड लगातार प्यूरिफाई होता रहता है, लगातार इसमें बदलाव होते रहते हैं। हमारे इमोशंस के साथ भी यही होता है, और इमोशंस से जो जुड़े हुए होते हैं वो हमारे हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स के बारे में आप जानते हैं, एक पर्टिकुलर एज में कुछ विशेष किस्म के हार्मोन्स निकलते हैं और उन हार्मोन का प्रभाव इतना जबरदस्त होता है हमारे चिंतन पर, हमारे इमोशंस पर, कि आप कह लीजिए कि हमें समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, हम बहते चले जाते हैं, जैसे कि कोई एक बाढ़ आ गई हो या कोई एक सुनामी आ गई हो और वो हमें बहाकर ले जा रही है। यहां तक कि हम समझ रहे हैं, कभी कभी तो होता है कि तर्क हमें संकेत करता है कि नहीं, ये गलत है, ये जो तुम कर रहे हो वो स्थायी नहीं है, ये जो जो आकर्षण है, चाहे वो दैहिक आकर्षण ही क्यों ना हो, किसी के साथ संबंध की बात क्यों ना हो, या कोई डिसीजन लेने की ही बात क्यों ना हो, हमें लगता है कि ये सही तो नहीं है, मतलब मन में एक संदेह का भाव पैदा होता है, लेकिन फिर भी नहीं, यही सही है, मैं यही करूंगा, यही होना चाहिए, मुझे यही चाहिए, इस तरह की डिमांड होती है। क्योंकि वो जो आकर्षण है, वो आकर्षण इतना प्रबल है, इतना प्रबल है कि वो तर्क को ठहरने ही नहीं दे रहा है। तो मित्रों, ये हार्मोन्स का प्रभाव है। हार्मोन्स का प्रभाव का मतलब है कि ये प्रकृति प्रदत्त है। अब इस हार्मोन्स से लड़ने का अर्थ होता है कि प्रकृति से लड़ाई करना, और प्रकृति से लड़ना आसान काम नहीं होता है। और सच पूछे तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरे नौजवान साथियों इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, विशेषकर नौजवान साथी, क्योंकि मेरे पास इस तरह के मेल्स आते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि उन मेल का जवाब सीधे सीधे मेल के जरिए देना थोड़ा सा संभव नहीं होता, तो जब कोई ऐसा विषय आ जाता है तो फिर मैं उस विषय को ही इस लाइफ मैनेजमेंट में उठा करके और उस पर फिर विस्तार के साथ बात कर लेता हूं। फिर मुझे थोड़ा सा यकीन होता है कि वो जो समस्या वाले श्रोता थे वो भी इसे सुन रहे होंगे, उन्हें बात समझ में आ रही होगी, तो उन्हें थोड़ी सी मदद इससे मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब एक तरीके की मैंने बात कही। दूसरा देखिए कि कभी कभी हमारे मन में इस तरह की चीज उठती है, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को न करने का कोई बहुत लॉजिक कारण नहीं है कि हम बहुत व्यस्त हैं या हमसे नहीं बन रहा है, ऐसा कारण नहीं है। देखिए, नहीं बन रहा है तो हम छोड़ देंगे, बहुत ज्यादा व्यस्त है तो अभी एक साथ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसी के साथ ही साथ एक दूसरा कारण होता है कि मन नहीं कर रहा है, इस काम को करने का मन नहीं कर रहा है। भाई मन क्यों नहीं कर रहा है? अब ये जो मन नहीं कर रहा है, देखिए ये फिर से एक बार एक इमोशंस की तरंग है, एक भाव की उमंग है, भावना है ना, ये तर्क नहीं है। तर्क तो कहेगा भाई क्यों नहीं कर रहा है, आप फ्री हैं, वातावरण सब अच्छा है, आपके सामने चीजें हैं, आप अभी तक करते रहे हैं और आप करने से इसे फायदा ही आपको होना है, बल्कि नहीं करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो तर्क तो कह रहा है कि इसे आप करिए, सारे इंस्ट्रूमेंट तो प्रोवाइड कर रहा है कि करिए, लेकिन मन कर रहा कि क्या कह रहा है कि नहीं, इसे नहीं करने का मन कर रहा है। और फिर हम निर्णय क्या लेते हैं कि इसे नहीं करेंगे, फिर हम समझा लेते हैं कि करेंगे भी तो उतना अच्छा नहीं होगा, और चलो आज नहीं भी करेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा। तो मित्रों, यह भी भावना है, यह भी एक प्रकार की भावना है। तो मित्रों, ये दो प्रकार की मैंने भावनाओं से आपका आज परिचय कराया है। आप सब भी अपनी अपनी तरफ से मुझे सुझाव दें और हम कल इस पर फिर आगे बात करेंगे कि अब इनको मैनेज कैसे किया जाए, क्योंकि जब तक मैं ये आपको पूर्व परिचय नहीं देता तो शायद मैनेजमेंट की बात भी उतनी ज्यादा समझ में और पकड़ में नहीं आती। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब मैं आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।